کلام مقدس میں سے عہد نامہ جدید مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11 باب اس کی 27 آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہم پڑھیں گے۔ اور وہ پھر یروشلیم میں آئے، اور جب وہ ہیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہن اور فقیہ اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ مجھے جواب دو۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے کہ سب لوگ واقعہ یوحنا کو نبی جانتے تھے۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جو واقعہ یہاں پر ہے اس کا کانٹیکسٹ جاننے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ روز اسی یسوع نے کوڑا اٹھایا اور ہیکل کی صفائی کی تھی۔ یہودیوں کا ایک ٹولہ، ہو سکتا ہے کوئی 20 آدمی ہو، 25 آدمی ہو، اور یہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ، فقیہ اور فریسی، سردار کاہن، کاہن سب ان میں شامل تھے۔ یہ مسیح کی مخالفت پہ تلا ہوا تھا، اور مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو روز اول سے ہی یہ ٹولہ مخالف تھا۔ جب ہم اناجیل کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا زمانہ مسیح یسوع کے خلاف تھا، یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ 5,000 کا مجمع یسوع مسیح کے پیچھے ہوتا تھا، 7,000 کا مجمع یسوع مسیح کے پیچھے ہوتا تھا، لیکن ایک ٹولہ جو مسیح کا مخالف تھا، یہ بڑا مؤثر ٹولہ تھا، یہی آج آگے ہیں۔ دراصل جب یہ یسوع مسیح کی مخالفت کرتے ہیں، جب مسیح یسوع سے یہ سوال پوچھا گیا کہ قیصر کو جزیہ دینا جائز ہے یا نہیں، یہی ٹولہ تھا۔ جب یسوع مسیح سے یہ پوچھا گیا کہ تیرے شاگرد تو کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے، یہی ٹولہ تھا۔ انسان کو تو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہی لوگ تھے جو یسوع مسیح سے پوچھ رہے تھے۔ آپ نے تو جناب سبت ہی توڑ دیا، یہی ٹولہ تھا۔ اور ایک شخص، ایک عورت جو ہے وہ شادی کرتی ہے، اس کا ہسبینڈ مر جاتا ہے، وہ اس کے دوسرے بھائی سے شادی کرتی ہے، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، ساتویں سے، بار بار، باری باری، جب وہ مر جاتے ہیں۔ یہ سرکار ہمیں بتائیے کہ قیامت کے دن ان ساتوں میں سے کس کی بیوی ہوگی، یہی ٹولہ تھا۔ چپکلش یسوع مسیح کے ساتھ پہلے دن سے جاری تھی، اور مخالفت کی مختلف وجوہات تھیں۔ نمبر ون، حسد کی وجہ سے، کہ جب یسوع مسیح نہیں آیا تھا تو لوگ کاہنوں کی طرف، سردار کاہنوں کی طرف، کیوں اور فریسیوں کی طرف آتے تھے، لیکن جب یسوع مسیح آ گیا تو لوگ یسوع مسیح کے پیچھے لگ گئے، تو یہ لوگ حسد کی وجہ سے پریشان تھے۔ تھیولوجیکل ریزنز تھی کہ مسیح اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یہ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے تھے۔ مسیح غیر قوام کی طرف راہ و رسم بڑھاتا تھا، یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے، کیونکہ وہ غیر اقوام سے میل ملاپ نہیں رکھتے تھے، اپنے آپ کو سپیریئر گردانتے تھے، اور ان کو بے شرع لوگ، گھٹیا لوگ، نامختون کہہ کر پکارتے تھے۔ آج جب گزشتہ روز مسیح یسوع نے ہیکل کی صفائی کی تو لگتا ہے کہ یہ ٹولہ پوری رات سویا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو اس نے شہرت حاصل کر لی، ہمارا نقصان کیا، لیکن اب جب ہیکل میں دکانیں توڑی ہیں تو ڈائریکٹ ہمارے پیٹ پر لات ماری ہے۔ آج کا جو میرا لیکچر ہے، اس میں آپ نے حوالہ اگر غور سے سنا ہے تو ان لوگوں نے مسیح یسوع سے سوال پوچھا، مسیح یسوع نے سوال کے مقابلے میں پھر سوال پوچھا۔ سوال کیوں لوگ پوچھتے ہیں؟ पाकिस्तान में रहते हुए आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं, यहाँ भी लोग आपसे सवाल पूछते हैं। बाज़ अवक़ात लोग आपसे पूछते हैं कि जी आप मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, आपकी तो सुना बाइबल बदल गई है, क्या आप तीन खुदाओं को मानते हैं, क्या आप एक इंसान को खुदा बनाते हो, वगैरह वगैरह। मसीह यसु ने अपनी मिनिस्ट्री में जो अनाजील से हमें इल्म हासिल होता है 156 मरतबा सवाल पूछा था। सवाल पूछने का जो स्टाइल है, जो अंदाज है, ये बड़ा खूबसूरत एक तरीका है कि आप सवाल पूछ के किसी के अंदर से जो वो नहीं भी बताना चाहता वो निकाल लेते हैं। मतलब एम्बेसी में आप जाते हैं, वो आपसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, और वो सवाल इसीलिए पूछते हैं कि आपसे सच उगलवा लेते हैं सवाल पूछने के ज़रिए। पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो भी सवाल पूछते हैं, और जब कोर्ट में आप जाते हैं तो वकील भी आपसे क्रॉस इन्वेस्टिगेशन करके वो सवाल पूछता है आपसे, आप उनके सवालों के जवाब देते हैं, और वहीं पे जहाँ कहीं आपने झूठ बोला होता आप पकड़े जाते हैं। ये मसीह यसु को अजीम उस्ताद इसीलिए कहते हैं कि वो भी सवाल पूछता था, फकीहों और फरीसियों से सवाल पूछता था, मुखालफीन से सवाल पूछता था, और उनको लाजवाब कर देता था। तो आज भी आप ये देखें कि जिन लोगों के साथ मसीह यसु का वास्ता था, ये इंतहाई पढ़े लिखे लोग थे। मसीह यसु एक वाहिद शख्सियत है जिसको अपने पढ़े लिखे मुखालफीन का सामना था, और जब ये सवाल पूछते थे तो ये सवाल इतने सिंपल नहीं होते थे। इसलिए आज के सरमन से जो बात मैं बताना चाहूँगा कि आपसे भी अगर कोई सवाल पूछता है तो कोशिश करें कि उसके जहन के अंदर झांक सकें कि ये पूछ क्या रहा है। बाज़ात वो आपसे पूछ कुछ और रहा है लेकिन उसके दिमाग के अंदर खलश कोई और है। मसलन जब आपसे पूछते हैं कि आप मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। मसीह यसु से जब ये पूछा गया कि कैसर को जजिया देना जायज़ है या नहीं, तो इवन दैट वाज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। अगर यसु मसीह ये कह देते हैं कि हाँ कैसर को जजिया देना जायज़ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त 6-7 यहूदियों की पुर मुजाहिदीन की तंजीमें थी, वो मसल्ला होकर फिरते थे, रूमियों के ख़िलाफ़ थे, डाके मारते थे, कत्ल करते थे। बराबा में से एक था जिसको गिरफ़्तार कर लिया गया था बगावत के जुर्म में। ऐसी तंजीमें वो यहूदियों को मना करते थे कि खबरदार आपने रूमियों को टैक्स नहीं देना, क्योंकि ये काबज़ ग्रुप है, बाहर से आए हुए हैं, हमारे मुल्क पे कब्ज़ा है, हमारे वसाइल पे कब्ज़ा है, टैक्स नहीं देना। यसुमसी अगर कह देता है कि हाँ जी कैसर को आप दें टैक्स, तो ये ग्रुप आकर मसीह यसु के सामने मुखालफ के तौर पर खड़ा हो जाता और एक और महाज खुल जाता है, और मसीह यसु को अपना मिशन कंप्लीट करने में ज़रूर मुश्किल पेश आती। दूसरा जवाब इसका ये था कि यसु मसीह कह देते कि कैसर को जजिया देना जायज़ नहीं। अगर आपने किंग ऑफ द किंग्स या जीसस फिल्म या पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है, तो इन सारी फिल्मों में एक बात कॉमन है कि जहाँ पर यहूदी जमा है वहाँ पर कैसर का कोई ना कोई नुमाइंदा मसल्ला घोड़े पर सवार होके आ जाता है, और उसकी ये ड्यूटी है कि जहाँ 10 आदमियों से ज़्यादा जमा हो जाए तो वो कैसर को रिपोर्ट करेगा कि ये लोग जमा थे। तो वजह ये थी, खसूसी तौर पर यहूदियों का जो इलाका है वो ज़्यादा शोरश ज़्यादा इलाका था, और कैसर हमेशा ऐसा शख्स चुन कर वहाँ गवर्नर मुकर्रर करता था, और ऐसे बंदे अपॉइंट किए जाते थे कि यहाँ पर यहूदी शोरश ना कर सके। अगर यसु मसीह कह देते कि कैसर को जजिया देना जायज़ नहीं है, तो कैसर को रिपोर्ट पहुँच जाती कि भाई एक शख्स आ गया, वो आपको टैक्स देने से मना कर रहा है, इसका मतलब वो बगावत पे उकसा रहा है लोगों को, बागी की सजा मौत होती है। यसु मसीह ये जानते थे, उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दे दिया। उसने कहा जो कैसर का वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। कितने खूबसूरत तरीके से मसीह यसु ने इस बात को टैकल कर लिया। और ये जो सवाल पूछा था कि वो किसकी बीवी होगी, आपका क्या ख्याल है कि ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था? नॉट सिंपल। ये सदूकियों की तरफ से सवाल था जो मसीह यसु को ये बावर कराना चाहते थे कि क़यामत कोई चीज़ नहीं है, फरिश्ते कोई चीज़ नहीं है, मौत के बाद ज़िंदगी कोई चीज़ नहीं है, इंसान मर गया तो ये उसका ड्रॉप सीन है। इसलिए उन्होंने ये एक फ़र्जी किस्सा घट के मसीह यीशु के सामने रख दिया कि सरकार देखें एक बीवी है, उसके सात शौहर हैं, तो क़यामत के दिन तो वो सारे बारी बारी उसको कहते हैं कि भाई तू मेरी बीवी थी, वो कहेगा तू मेरी बीवी थी, मसला हो जाएगा। लेकिन वो जानते नहीं कि वो दुनिया के अजीम इंसान, अजीम टीचर, अजीम उस्ताद के सामने खड़े थे। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। तो ठीक है, ये जवाब भी खूबसूरत था, लेकिन असल बात थी कि क़यामत का नज़रिया अपनी जगह पर दुरुस्त नज़रिया था। इसलिए मसीह यीशु ने कहा क़यामत में या आसमान पर ब्याह शादियाँ नहीं होगी, वहाँ पर हम सब फरिश्तों की मानद होगी। वो एक सेकंड में मसीह यीशु ने उनके दांत खट्टे कर दिए। और हम देखते हैं कि जब भी मसीह यीशु से उन्होंने सवाल पूछा तो मसीह यीशु ने उनके दांत खट्टे कर दिए, उनको लाजवाब कर दिया। आज के सवाल में भी आप देखेंगे कि उन्होंने मसीह यीशु से सवाल पूछा है तो मसीह यीशु ने एंड में उनके दांत ही खट्टे किए हैं, और आखिर में वो मसीह यीशु के आगे इस बात का इतराफ़ कर लेते हैं कि सरकार हमें आपके सवाल का जवाब नहीं आता। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि सवाल पूछना भी कितना इम्पॉर्टेंट है, और सवाल ऐसे ही अंदाजे से नहीं पूछा जाता, किसी स्कीम के साथ पूछा जाता है। और अगर कोई आपसे उल्टा सवाल पूछता है तो आप उसके जहन में झांक के देखें कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। हम ये बात कर रहे थे कि मसीह यीशु लोगों से सवाल पूछते थे, और मसीह यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री में 156 दफ़ा लोगों से सवाल पूछा। और जो हवाला पढ़ा गया इसमें लोगों ने यीशु मसीह से आके पूछा कि तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है। मैंने ये अर्ज़ किया कि मसीह यीशु ने हैकल की सफाई की थी, और इन यहूदियों ने, इस ग्रुप ने ये सोचा कि अब डायरेक्ट इसने हमारे पेट पर लात मारी। वजह, यहूदियों ने, इस ग्रुप ने जो दुकानें बनाई हुई थी हैकल में, ये वो एरिया था जहाँ पर जो गैर अक़वाम का इहाता था, और हो सकता उसमें 100 दुकानें बनाई हों, क्योंकि उस ज़माने में मनी चेंजर के लिए जो दुकान बनाने की ज़रूरत है, एक छोटा सा टेबल हो, एक फट्टी रख ले, ये दुकान हो जाती है। हाँ, हो सकता है कि जो भेड़ बकरियां जहाँ बेचते हो उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए, बाकी छोटी छोटी 100-150 दुकानें अगर बनी हो तो इसका किराया हैकल को जाता होगा, और इस कमेटी को, इस ग्रुप को ज़रूर इसका कमीशन भी मिलता होगा। इसलिए उनका नुकसान हुआ, इसलिए वो रात सोए नहीं। उन्होंने कहा कि इस शख्स का बंदोबस्त करना चाहिए, लेकिन तरीके से करना, इसको अगर कत्ल भी करना है तो इस तरीके से करना है कि अवाम हमारे दुश्मन ना हो जाए, क्योंकि उस वक्त तक यीशु मसीह की मकबूलियत अपनी आखिरी हदों को छू रही थी। लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उसके पैरोकार बन चुके थे, 5-5, 7-7 हज़ार का मजमा उसके पीछे होता था। अब ये रात सोए नहीं है, और उन्होंने एक सवाल तैयार किया, और सवाल उन्होंने पूछा जाके, और सवाल इस किस्म का था कि इसके दो मुमकिन जवाब हो सकते थे। पहला जवाब इसका ये हो सकता था कि मैं इनको अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, या जो हैकल की सफाई की है जी, मैं मनमौजी शख्स हूँ, मेरे दिल में आया, मैंने ये कर दिया। दूसरा जवाब इसका ये हो सकता था कि नहीं, मैंने इलाही इख्तियार से ये काम किया। तो दो जवाब हो सकते थे। ये सवाल इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि दोनों में से कोई भी जवाब दे तो हर हाल में उसको फंसाना और उसको मारना, इसको, इस कांटे को रास्ते से हटाना, इस पत्थर को रास्ते से हटाना। ये उन्होंने साजिश तैयार की और यीशु मसीह के पास आ गए। मैं ये बता रहा था कि जिस मुल्क में आप रहते हैं आपसे भी लोग टेढ़े सवाल पूछते हैं। कादियानी हज़रात एक बड़ा ख़तरनाक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं जी, बाग़े आदन में आदम और हवा ने गुनाह किया, और उनके गुनाह की वजह से इंसान और खुदा में दीवार हो गई, उनको कुर्बानी की ज़रूरत थी, बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं है, और मसीह यीशु आया, उसने कफ़ारा दे दिया, अब उसके कफ़ारे पर ईमान लाते हैं तो अपनी जात याफ्ता हो जाते हैं, आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जिस तरीके से मफलूज के गुनाह माफ़ हुए तो अपनी बीमारी से भी छूट गया था। एंड में वो आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप ये बताएँ कि वो औरतें जो निजात याफ्ता हैं, वो तो अभी भी दर्द दे के साथ बच्चे जन रही हैं जो कि हवा को सजा मिली थी। तो इसका मतलब आपका कफारे का नज़रिया तो गलत हो गया। हम इसका भी जवाब देना जानते हैं और देते हैं, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको इशारा दे रहा हूँ कि लोग कितने ख़तरनाक सवाल तैयार कर लेते हैं। यही बात मसीह यस्सू के लिए की गई। आज का सवाल भी जो हमने पढ़ा कि तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, आपने हैकल में कोड़ा उठा लिया, दुकानें तोड़ दी, तोड़ फोड़ की, किस इख्तियार से? मैंने अर्ज़ किया कि अगर यस्सू मसीह ये कहते कि मैं इनको अपनी मर्ज़ी से मैंने किया, मेरे दिल में आई, मैंने कूड़ा उठाया, हैकल की सफाई कर दी, तो ये लोग कहते अच्छा भाई ये तो मनमौजी शख्स है, तोड़ फोड़ करता है। एक स्टाम्प पेपर लेते, उस पर दरख्वास्त लिखते और हक में वक्त के हाँ वो दरख्वास्त देते कि आज इसने तोड़ फोड़ की है, ये शख्स नक्श अमन का ज़िम्मेदार है, आज इधर तोड़ फोड़ की है, कल तारक रोड पर दुकानें तोड़ देगा, परसों इम्तियाज़ में जाके करेगा, उससे अगले दिन सदर में तोड़ फोड़ करेगा, फिर अनारकली की दुकानें तोड़ देगा, इससे पेशतर के मज़ीद तोड़ फोड़ करे और नक्श अमन का ज़िम्मेदार इसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। ठीक है, दूसरा जवाब यस्सू मसीह ये दे सकते थे कि नहीं, अपनी मर्ज़ी से नहीं, मैंने इलाही इख्तियार से कूड़ा उठाया, मुझे खुदा ने कहा। अच्छा, आपको खुदा ने कहा, एक तो आप बेहुरमती कर रहे हो हैकल की और दूसरा कह रहे हो कि ये मुझे खुदा ने कहा। कुफर दर कुफर, मतलब एक तो कुफर कि खुदा के घर की बेहुरमती और वो भी कह रहे हो कि मुझे खुदा ने कहे। सरदार कायन हो सकता अपना लेटर हेड साथ ही लेके आया होता तो वो उस पर लिखता कि इसने कुफर किया है, लिहाजा इसको फाटक पे खींच के ले जाओ और संसार करो। मसीह यस्सू एक डिबेटर भी था। उसने जब उनके दिलों के ख्यालात जाने तो कहा कि भाई एक सवाल मैं भी तुमसे पूछता, आप मुझे ये बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मैं हैरान हूँ यस्सू मसीह की इंटेलिजेंस पे कि ये ग्रुप पे पूरा, वो पूरी रात सोए नहीं है, सर जोड़ के बैठे हैं और उन्होंने सवाल तैयार किया और मसीह यस्सू ने एक सेकंड के अंदर सवाल तैयार कर लिया, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से था? इसके भी दो जवाब हो सकते थे। अगर आपने किंग ऑफ द किंग्स फिल्म देखी है तो फकीर और फरीसी दाढ़ियों वाले एक साइड पे चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहस शुरू कर देते हैं और बातचीत इस तरीके से कर रहे हैं कि मसीह को ना सुने। हो सकता है एक दूसरे को कहते तूने फंसा दिया, मैंने कहा था ना ये ना कर, वो उस्ताद आदमी है, लेकिन तूने हमें फंसा दिया, अच्छा अब करना क्या है, बताओ क्या करना। भाई हम कहते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था। नहीं 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 भाई, ये नहीं कहना। अगर आप कहोगे कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था तो वो दूसरा सवाल दाग देगा कि अगर आसमान की तरफ से था तो इसका मतलब वो नबी था, उसको खुदा ने भेजा था और दरिया यर्दन पर तो लोगों की लाइन लगी हुई थी, लोग कतार दर कतार चले आ रहे थे और उससे बपतिस्मा ले रहे थे, तुम्हारे ग्रुप को क्या मसला था, तुमने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? ओ भाई ये नहीं कहना भाई, फिर क्या कहें भाई? हम कहते हैं कि यूहन्ना आसमान की तरफ से नहीं, उसका बपतिस्मा इंसान की तरफ से था। इसका यह मतलब बनता है कि यूहन्ना एक इंसान था, उसके अपने मन में आया कि काम तो कोई ना कोई करना है, अभी वेल्डिंग की दुकान खोलनी है या सब्जी की रेड़ी लगानी है, नाई की दुकान खोलनी है, कुछ ना कुछ तो करना है, तो भाई क्यों ना बपतिस्मे देना शुरू कर दें। तो इसका मतलब ये है कि वो नबी नहीं था, उसके अपने जेन की ये पैदावार थी, उसके जेन में ये बात आई तो उसने बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। दूसरे फिर कहने लगे ये भी नहीं कहना, ओ भाई आपको पता कि ये जो लोग हैं ये उसको नबी मानते हैं और जाहिर है जिन्होंने उसे बपतिस्मा लिया हुआ है वो तो उसकी बहुत तज़ीम करते हैं, उनके सामने अगर आपने कह दिया कि यूहन्ना नबी नहीं था, वो एक महज इंसान था और उसने इंसान के तौर पर ये काम शुरू किया था, मसला हो जाएगा। उसकी वजह कि यूहन्ना अपनी ज़िंदगी में नबी था, जब उसको शहीद कर दिया गया तो अब वो शहादत का रुतबा पा चुका था, अब उसकी वक्त और कदर उन लोगों में जिन्होंने उससे बपतिस्मे लिए थे। ना एक इंसान था और इंसानी तौर पर बपतिस्मे दे रहा था, फिर क्या कहें? बड़े परेशान हैं, नहीं समझ में आता। एंड में जाकर यीशु मसीह के सामने कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि यूहन्ना का बपतिस्मा इंसान की तरफ से था या आसमान की तरफ से था। तो यीशु मसीह ने कह दिया कि फिर मैं भी तुम्हें नहीं बताता, ये हरगिज ना समझा जाए कि यसु मसीह को इसका जवाब नहीं आता था। यसु मसीह को इसका जवाब आता था, लेकिन वो जानता था कि ये ग्रुप जो सवाल पूछ रहा है ये अपने इलम की तिशनगी के लिए सवाल नहीं पूछ रहा, ये मुझे फंसाने के लिए सवाल पूछ रहा। आज भी दुनिया में हमारे पास भी लोग आ जाते हैं मुख्तलिफ वजूहात की, कुछ लोग तो वाकई इलम की तिशनगी के लिए सवाल पूछते हैं, कुछ लोग इसलिए कि पादरी साहब को फंसाते हैं, कुछ लोग इसलिए कि पादरी साहब को हम ये बताएं कि हमें भी बहुत कुछ आता है, इस किस्म की बातें वो हमारे साथ करते हैं और फिर सवाल पूछते हैं। बहरा कम टू द पॉइंट कि यसु मसीह के सामने इस ग्रुप ने आके कह दिया कि हमें नहीं पता कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से। मैं जो इससे नतीजा निकालता हूँ कि इंतहाई पढ़े लिखे लोग मसीह के सामने लाजवाब हो गए, हालांकि वो अपनी ज़ात में अपने आप को बड़े परफेक्ट समझते थे, आलम समझते थे और समझते थे कि जो कुछ उनको आता है, जितनी शरीयत उनको आती है शायद ही किसी को आती है, लेकिन वो दुनिया के अजीम उस्ताद के सामने लाजवाब हो गए। मसीह यसु ने उनके दांत खट्टे कर दिए। मुझे मसीह यसु की वो बात भी याद आती है कि जब तुम मेरे शागिर्द बनोगे तो सच्चाई से वाकफ़ हो जाओगे और यही सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी। वाकई आज हम मसीह के शागिर्द हैं, हम तोहमात से आज़ाद हैं, गुनाहों से आज़ाद हैं, परेशानियों से आज़ाद हैं, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि हम निजात याफ्ता हैं। तो मसीह की खूबी ये है कि जब आप उसको अपना उस्ताद माने, उसके शागिर्द बने, तो जो बात उसमें थी वही इख्तियार उसने अपने शागिर्दों को, अपने खादमों को भी दे दिया। आज हम दुनिया के सामने भी दिलेरी के साथ कहते हैं जैसा भी कोई सवाल पूछे हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इस मैसेज से जो लेसन आपने सीखना वो ये है कि उस वक्त के लोग, अपने बेहतरीन नज़रियात रखने वाले लोग मसीह के सामने लाजवाब हो गए। अगर आप ये यकीन रखते हैं कि मसीह यसु दोबारा दुनिया में आएगा और उसने दुनिया की अदालत भी करनी है, उस वक्त अगर आपके नज़रियात मसीह के सामने फेल हो गए तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपने नज़रियात तब्दील कर लें, तो अगर उसमें कोई गलती है तो अभी सोचें और अपने नज़रियात तब्दील कर लें। और जिस तरह मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा था कि जब तुम सच्चाई से वाकफ़ होगे तो ये सच्चाई तुमको आज़ाद कर देगी, आप भी आज़ाद हो सकते हैं। खुदा आपको बरकत।